मेरे पिताजी भी मुझे सुन रहे हैं। हमारे पिताजी ने भी हमारी सुनने में नहीं दी, मेरी भैया भी नहीं दी, श्रीराम भैया भी नहीं आए और चारों तरफ मेरे मुर्दे लग रहे हैं। शाम में छोटी छोटी बूंदियां भी पड़ रही, चारों ओर हरियाली छाई हुई है, किसी को भैया नहीं आया। ऐसे पत्ते में दो दिन बैठा रो रहे थे, इतने मेहनत श्रीराम भैया है। राधा जी यही लगता हमको स्मृति कर गए और भैया के चरण पकड़ करके हम रोने लग गए। भैया भी रोने लग गए, भैया नहीं बन उनको हम लोग कैसे भूल सकते हैं। मैं काम में व्यस्त था कि मैं नहीं आ सकता, अभी तुम्हारे लेने के लिए आए हैं, अभी तुम हमारे साथ प्रस्तुत कर देते हैं और तुमसे अनुमति लेकर के तुम जा रही बरसाने में ले करेंगे। वहां पर पूरा पूरा तैयार है, ऊपर में जहां पर भी रामगढ़ है, ऊपर में मोर कोटी में चारों तरफ से झूले लग रहे हैं, मयूर उड़ रहे हैं, कोयल भक रही है, चारों तरफ में हरियाली छाई हुई है। आज तभी मैं जा रहा हूं, ये कह करके उन्होंने उनके साथ से और सतुर से उन्होंने अनुमति मांगी और वादा किया कि मैं कल परसों में दे जाऊंगा। उन्होंने कहा कि एक महीने तक हम अपनी बहन को अपने यहां पूर्णमासिक तौर पर जरूर हमको रखना है, पिता से वो करने दे गए और वहां पर जाकर के मैया रोने लगी, मैया से निपट गई। इसके बाद में जब शांत हुई तो वो सुने ऊपर पहाड़ पर जहां की ब्रह्मगिरी पर्वत है उस पर लगे हुए गिलास इत्यादि गढ़ में विभिन्न प्रकार की स्मृति मिलाएं। सखियां बुला रही हैं श्याम को, कभी श्याम बुला रहे हैं सखियों को, कभी तो एक तरफ से लगे हैं उस पर राधा कृष्ण बैठे हैं और कृष्ण दूसरे ओर से ही जा रहे हैं कि राधा जी ने गर्भ वाले उनको पकड़ लिए। कभी आमने सामने बैठ करके झूले झूल रहे हैं, कभी झूला इधर जाता है तो राधा जी ऊपर हो जाती है, कृष्ण नीचे हो जाते हैं, कभी इधर ऊपर में जाता है तो कभी राधा कृष्ण ही ऊपर हो जाते हैं, राधा जी नीचे हो जाते हैं। इस प्रकार से झूले लग रहे हैं और झूल रहे हैं और सखियां मल्लार राज जा रहे हैं। मल्लार राज बोलिए तो क्या बोलिए, बोलिए इसके बाद एक समय की और बात है। दूसरे वर्ष में राधा जी को जाने नहीं दिया, बताने नहीं दिया और वो भी इस वर्ष को जाने नहीं देंगे। हमने सुना है ये तो बरसाने जाने पर बाद में मनमानी करती हो और चांद तुम्हारे पास में मिलता है और तुझे नहीं छुटता है इसे जाने के लिए। उन्होंने उनको बंद कर दिए, इधर में चांद के लिए तरसने लगे और श्यामा जी के लिए तरसने लगे। कैसे मिलन हो, अंत में कृष्ण जी ने सुबह से कहा यदि मैं नहीं मिलता तो मेरी स्थिति बहुत खराब है, मैं हो सकता है कि बचना जाऊं, लेकिन ऐसे कोई उपाय कर बोलो जिससे कि हमारा उनका मिलन हो सके। अगर ठीक है मैं ऐसा उपाय करूंगा। उन्होंने कृष्ण से कुछ सवाल किया, परामर्श किया और चले गए बरसाना में। बरसाना में जाकर वहां पर इधर घर में डोल रहे हैं, राधा जी के मन के पास में जटले जी ने देखा, ये सुबह कहां से आया? आखिर कुछ गड़बड़ी है क्या? मैंने सुबह को डाटा कि तू क्यों आया, हमारे घर के आमने सामने से क्यों आना गाना कर रहा है, तुम यहां मत आओ। ये क्या पहुंचा कि मेरा बछड़ा मैं खो गया था। बहुत परेशान में मैंने पूरा वो बछड़ा नहीं मिला, इसीलिए मैं पूछने के लिए आया, तेरा बछड़ा क्या यहाँ आ गया? तो हो सकता है कि गुरु में बछड़ा मिलकर के यहाँ आ गया हो, मैं जरा खोजना चाहता हूँ। तो जरा छोड़ ले, यहाँ पर तुम्हारा बछड़ा कहाँ है? तो वो ढूंढने के लिए भीतर में चला गया, दो सारा इत्यादि सब देखने लग गया। और इसी बीच में श्रीमती जी से मिल करके उसने राधा जी को कुछ उपाय बताया। राधा जी उनके विरह में चलने थे, वो ठीक राधा जी जैसा देखने में था। राधा जी जैसे बोली थी, उनकी बोली जैसी थी, उम्र जितनी थी, सब प्रकार से वो ऐसा ही था। बस कपड़े पहनने का केवल अंतर था। उन्होंने राधा जी का वेश अपना जैसा बना दिया, अपने राधा जी का वेश बना करके वहीं पर बैठ गए, राधा जी वो बन गए। और उन्होंने राधा जी को अपना कपड़ा, अपनी पगड़ी, अपनी लड़कियां और पहनने का जैसा वो होता है वैसा सब कुछ एकदम सुबल जैसा उनको बुला, और एक छोटा सा बछड़ा, नया छोटा सा बछड़ा उनकी गोदी में दे, जिसे कोई ना समझ सके ये महिला है, इसलिए इस चीज को ढकने के लिए, बरसक्षम को ढकने के लिए यहां पर बैठा दिया, बछड़े को लगा दिया। और आकर के सुबल के स्वर में राधा जी कहने लगी, सुबल बन करके, देख भैया मैं कह रहा था ना कि हमारा बछड़ा यहीं पर है, देखो हमारा बछड़ा मिल गया ना, मैं बछड़े को लेकर के अब मैं जा रहा हूं। ये कह करके और उसको चकमा दे करके राधा जी चुनरी कटोटे, और वो कृष्ण गोचारण कर रहे थे गोवर्धन में, वहां पर लोग पहुंचे। कृष्ण ने उनको देखा, देखकर के सुबल तू राधा जी को नहीं देख करके आया, मैं कैसे ले आता, मैं नहीं ला सका। क्यों नहीं ला सका? अरे वहां पर पारे पर पारे, चार पांच पारे पड़े हुए हैं, वहां पर वो जटला इतनी बदमाश है, वो जाने नहीं देती, प्रवेश नहीं करने देती है। और आज तो अभिमन्यु भी, राधा जी का पति भी जटिया लेकर के वहां पर खड़ा था, यदि कोई कृष्ण आए उनका सखा तो उसका टांग तोड़ देंगे, इसलिए मैं गया किंतु वहां से लौट करके आ गया, वो राधा जी से मेरी भेंट ही नहीं होने दी, बहुत मैंने चेष्टा की किंतु वो कृष्ण बड़े अफसोस करने लगे, कि अब सखा मैं क्या करूं, उन्होंने कहा कि तो मैं क्या करूं। अब एकदम बिना में आतुर होकर के छटपट जटपट करने लगे, प्राण यहां तक आ गए, बछड़े को उन्होंने रख दिया है और रख करके अपनी पगड़ी हटा दी, और इसने में ललिता विचार था इत्यादि न्याय कहां से जुट गई, और देखा कि सखियों का पूरा समाज और राधा जी सुबल के देश में वहां पर खड़ी, कृष्ण को बड़ा आनंद हुआ, फिर गले से दोनों मिल करके वहीं पर झूला रचाया, और झूला रचाने के बाद में उसी बछड़े को लेकर के बछड़ा छोड़ दिया, और श्रीदान जी फिर वो चले गए, और जाकर के किसी प्रकार से वो राधा जी सुबल बहुत चतुर वहां से किसी प्रकार से वो वहां से निकल करके चला आया, और दोनों को मिलते हुए देकर के बहुत ही आनंदित हुआ। कृष्ण उसकी बार बार प्रसन्नता सुबल की करने लगे। इस प्रकार से आज वृंदावन में ये लीला होती है, रात में भी ये लीलाएं होती हैं, विशेष करके राधा दामोदर में गोविंद जी ने आज राधा जी को सुबल सखा बनाकर उनके हाथ में बछड़ा दे देते हैं, और उनको इस प्रकार से दिखलाते हैं, सुबल को भी राधा जी बना करके आज सर्वत्र ये लीलाएं। अभी उनके मुख से एक सुंदर कीर्तन सुनेंगे, हमारे क्या नाम है, जिनका मन सुख गया है, ऐसे ये मन सुखा जी हैं, मानो विपत्ति का पहाड़ गिर गया हो,
चैतन्यों में एक बड़ा गुण होता है कीर्तन, जो कीर्तन सुंदर करने वाले में बड़ा गुण, वो दूसरे के कीर्तन में नहीं बोले, मुख चुरा करके रखे और उनकी आशा रखे कि सभी हमारा फॉलो करें दूसरे, किंतु दूसरे के कीर्तन में वो नहीं बोलेंगे, ऐसा इनका स्वाभाविक गुण है। इनका कोई दोष मैं नहीं देखता, ये गायकों का ही ये दोष होता है। अभी सुनिए इनके एक कीर्तन सुनाई। रोग लगे हुए, समस्याएं एक पर एक, समुद्र में जैसे तरंगे आती हैं, एक ऋतु है दूसरी आती है, फिर दूसरी आती है, फिर तीसरी आती है, ऐसा जगत में कोई नहीं है जो दुखी न हो। किसी को कम दुख है, किसी को अधिक, किंतु दुखी सभी हैं। बुढ़ापा का दुख जरूर आएगा, लाख चेष्टा करो बुढ़ापा आएगी और जोर से तुम्हें भुगा लेगी और अंत में प्राण निकल जाएंगे और इसको जला दिया जाए, ये भी अनिवार्य है। इसलिए हमारे ऋषि मुनियों ने, कृष्ण ने स्वयं जगत का कल्याण कैसे हो, जगत को जीव कैसे सुखी हो, इसके लिए भगवान अवतरित हो रहे हैं, अपने भक्तों को बीच बीच में अवतरित करा रहे हैं। इस जगत से पार करने के लिए, दुखों को पार करके सुख और शांति का रहने के लिए बस एक ही उपाय है, वो क्या, भगवान का गुणगान, भगवान की लीलाओं का कीर्तन करें, इन पदों का गायन करके अपने मन को उसमें रमाए, तब तो आदमी सुखी हो सकता है। यदि कोई कहे कि खाना पीना कैसे चलेगा यदि इसी में रमाए, कैसे लगेगा, मीराबाई का गुजारा नहीं हुआ, हम लोग दिन रात इसी में लगे रहते हैं, हमारा गुजारा नहीं होता। जिसको प्रभु ने पेट और मुख दिया है उसका सबका गुजारा वो प्रभु करते हैं, दाता राम है, सबके दाता राम। पशु पक्षी की पतंग ऐसा कोई नहीं है जिसके दाता राम नहीं है, कृष्ण नहीं है, इस पर विश्वास कर करके भगवान का हरिनाम करो तो देखो तो संसार की परिस्थिति बदल जाएगी, सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। तव कथा मृतम तप्त जीवनम कप्तिरीडितम कल्पता, भगवान की कथाएं ऐसी हैं उनमें कितनी शक्ति है, वो जसमनी शक्ति है जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते। पंगु को पहाड़ लगाना देता है ये कथाएं, पंगु भी बड़े बड़े गिरिबाजों को लांग जाते, मुख को बाचाल बना देता है, सारे दुखों का अंत कर देता है। भगवान का एक नाम यदि कोई करे और निरंतर यदि नाम करे तो उसका बात ही क्या है, न हो तो परीक्षा करके देखो ये दुख होता है। इसीलिए हमारे ऋषियों ने, महर्षियों ने, रसिकों ने, भावुकों ने कृष्ण लीला का विविध प्रकार से गान किया है। हम लोगों को संगीत अच्छी लगती है, सखी का संगीत में कृष्ण लीला का ऐसा सुंदर वर्णन किया, जो सावन आया कुहार पर पड़ रही है, मयूर कूक रहे हैं, कोयल भुहक रही है, हिंडोले लगे हुए हैं, कदम्ब के फूल खिले हुए हैं, सुंदर सुंदर सुगंधा आ रही है और उसमें कृष्ण को झुला रहे हैं, मल्लाग राग से गा करते करते उसमें तक देखें जरूर कहाँ चला जाएगा। इसलिए कृष्ण मंत्र में, कृष्ण नाम में, कृष्ण संगीत में, कृष्ण की लीला कथाओं के चिंतन में और स्मरण में इतनी शक्ति है कि सारे दुख भाग सकते हैं, एक ही जन्म में भव सागर को यथाशीघ्र पार करके भगवान के लोक में भगवान की सेवा में निमग्न हो सकता है। हम सभी भगवान के दास दासी हैं। अभी संसार में भगवान को भूल करके हम लोग इस जगत में आए हैं और माया धानी में हमें पीस रही है, उसमें कोई भेदभाव माया में नहीं है, वो किसी को नहीं छोड़ती। जो कृष्ण को भूल रहे हैं, माया लिप्त हो रहे हैं, उन सबको वो अच्छी तरह से सबको की भांति उन्हें पीस देगी। उसमें गरीब अमीर, धनी गरीब, रईस जमींदार, किसी का भेद नहीं है, भाव नहीं है। डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, बैरिस्टर, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री किसी को नहीं छोड़ेगी। सबको शत्रु की तरह मैं पीट देगी यदि भगवान का भजन नहीं किया। केवल ये संगीत कीर्तन मनोरंजन के लिए ही नहीं है। जब तक हम सुनते हैं देखो तो कैसा इसके प्रभाव ये संसार को हम भूल जाते हैं, दुख को भूल जाते हैं और इसमें तन्मय भूल जाते हैं। इसलिए साधु संत लोग या तो संसार में रहते ही अथवा को त्याग करके भगवान का नित्य निरंतर गुणगान करते हैं, नाम करते हैं। उल्टा नाम जपत जगत जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म के समान बन गए वाल्मीकि जी। अरे मीरा को देखो कितने उसको कष्ट, कितने कष्ट दिए उसको, सांप से कटवाने की चेष्टा की, उसे विष जलवाया, उसे जलाने की चेष्टा की, नहीं जला। प्रहलाद महाराज जी को भी देखो, प्रहलाद महाराज के ऊपर में कितनी समस्या, एक हिरण कहीं जंगल में चल रही थी, भोली भाली बड़ी सुंदर, वो जंगल में चलते चलते एक ऐसे स्थल में जा पहुंची जहां पर भी बड़ी सुंदर सुंदर घासें हरी थी, एक तरफ में नदी और दूसरे तरफ में चार पांच बड़े 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 कुत्ते शिकारी, और एक तरफ में कुत्ते के ठीक विपरीत तरफ में एक बड़ा भारी मोटा शिकारी धनुष और बाण लिए हुए तैयार है, और एक तरफ में आगे ले लेंगे तदरस भोजन से जाल लगा हुआ विराट, इसे देखकर की हिरण घबरा गई, मरने वाली ही है, चारों तरफ से विपत्तियां हैं, किधर जाए, जिधर में जाल था उसके पीछे में आग जल रही थी, इसलिए किसी तरह भी उठा है बचने की कोई आशा नहीं रह गई। देखा जब तुम मर रही है मैं क्या करूं, उसने आंख बंद कर दिए और बोली हे गोविंद राख शरण अब सुखी बना है, हे गोविंद मैंने आपके चरणों में अपने को मैंने समर्पण कर दिया, अभी इस विपत्ति में आप ही हमारे रखवाले हैं। उत्तर दक्षिण पूरा पश्चिम चारों तरफ में विपत्तियां, एक तरफ में आग जल रही, एक तरफ में वो जाल, एक तरफ में कुत्ते, एक तरफ में शिकारी, कैसे मैं बचूं। बस उसने आंख बंद करके त्राही त्राही करके भगवान को पुकारने लगे। इतने में देखा बड़ी जोरों से आंधी आई, इतने जोरों से पत्थर कंकड़ भी उड़ने लगे और शिकारी के आंखों में वो कंकड़ पत्थर और धूल भर गई, और गेहूं उसने हाथ उठाया अपने को ये बचा इसके आंख को ठीक करने के लिए, इतने में बाण उछला और कुत्तों को लगा, कुत्ते तो दो एक मरे और दूसरे की यहां भागे, और इतने में जो बरसी बरसा होने लगी आग बुझ गई और जाल कहां उड़ करके चला गया, और इधर शिकारी भी बैठ करके दोनों आंखों को ऐसे करना, इसने हिरण ने देखा कि चारों तरफ में रास्ता साफ, बस जिधर से इच्छा आई उधर से दौड़ती हुई जंप करती हुई और निकल करके चली गई। बहुत ऐसे ही हम संसार में बहुत से दुखों से घिरे हुए हैं, पल पल में दुख आते हैं, पल पल में हमें कठिनाई आती हैं, और ऐसा से अब कैसे बचें, मतलब ये पागल हो जाएंगे या मर जाएंगे। उसी समय यदि कोई सब कुछ छोड़ करके चार हाथ उठा दे द्रौपदी की भांति, हे प्रभु राख शरण अब तो जीवन है, बस सारी समस्याएं मिट जाएंगी, एक मिनट चुटकी बजाते ही देखेंगे चारों तरफ न रास्ता साफ हो गया, और जम को और मृत्यु के भी सिर पर पैर रखते हुए एकदम वैकुंठ मूलोक में वो चला गया। ये उन्होंने सीखा, इसलिए भगवान का स्मरण करो, कीर्तन करो, अपूर्ण में विश्वास करो, भगवान के भजन के बिना कहीं भी सुख और शांति नहीं। बारी मथे बरु हो यदाते बरुदे बिनु हरि भजन न भव दरिय यह सिद्धांत यपे, बार मथे बंधी पानी के मथने से भले ही पिलोने से घी निकल आए नहीं निकलेगा लाख जन्म में भी, तो अभी ये मान लेते हैं यहां निकल सकता है, और बार मथे बरु हो चिकता के बरु से, और जमुना की रेती उठा लाओ और घानी में दे दो और उसको पीसते रहो लाख जन्म तक, तो अभी तेल नहीं निकलेगा, किंतु मान लिया कि हाँ इसमें से भी तेल निकल सकता है, ये असंभव भी संभव हो सकता है, किंतु भाई एक चीज नहीं होगा, दिन भरी भजन न भवतरी, बिना भगवान के भजन के इस संसार को, इस संसार के कष्टों को आप जन्म जन्मांतर तक भोगते रहेंगे किंतु पार नहीं हो सकते हैं। इसलिए दुखों को पार करना चाहते हैं और नित्य आनंद और सुखी होना चाहते हैं तो भगवान का भजन कीजिए, भक्ति कीजिए। बहुत सरल, चलते फिरते उठते बैठते नाम का स्मरण करो, चलते फिरते कीर्तन कर, राधा रमन हरि गोविंद जय गोविंद जय जय राधा जय जय काम करो, बच्चों को पालो पोसो, इसमें क्या लगता है? चलते फिरते कहने में पैसा नहीं लगता, पवित्र स्नान करने के लिए कोई जरूरत नहीं है, कोई भी समस्या नहीं है, उसमें कोई खर्च नहीं है, फिर क्यों, तो क्यों नहीं कर सकते हैं? गोविंद दामोदर गोविंद दामोदर, क्यों नहीं कर सकते? पैसा लगता है? अरे जैसा स्वर नहीं है, राग नहीं है, हारमोनियम ताबला एसराज नहीं, कोई बात नहीं, मोटी आवाज में भी तुम लोग कर सकते हो, इसमें क्या लगता है? सारी समस्याएं सुलझ जाए नीति से और जीवन में सुखी और शांति हो सकते हैं। इसीलिए झूलन का त्योहार हमारे ऋषि महर्षियों ने बनाया है। कृष्ण इस झूले में कितना आनंदित रूप में झूलते हैं, करोड़ों गोपियों को झूलाते हैं, अपने झूलते हैं, करोड़ों करोड़ों गोपियों को झूलाते हैं, उसमें प्रेम नित्य करता है, दूसरों समय नित्य कराता है, राधा कृष्ण को भी नित्य कराता है, सारा ब्रज नाचता है, भक्त लोग नाचते हैं, कोयल नाचती है, मयूर कूदते हैं, नाचते हैं, सभी लोग इसमें तन्मय हो जाते हैं। इसे बढ़कर के कोई सहज सहज तरीका नहीं है विश्व से उत्तर। इसलिए आप लोग हरिनाम कीजिए, कृष्ण की लीला का काम का श्रवण कीजिए, इनके मधुर मधुर पदों का गायन कीजिए, देखेंगे संसार कहाँ दूर हो जाएगा, अपने आप। अभी आप कीर्तन कीजिए महामंत्र का करो।
भक्ति भी नहीं आएगी, इसलिए इन चीजों को हमको ध्यान रख सकते।
वैष्णव की चरण सुनी जाते हैं, स्वामी चरण करें, कब वैष्णव हमारे पर दया करें, किसके लिए भी सब भगवान करें, अपने प्रयास से लाभ करो वो सब कर लो। इसी को समझो, तन के द्वारा भगवान नहीं, लाभ तुम करो अपने मन से, अपने मन से तुम हरिनाम करो भी करना है, अपने मन से शास्त्र विधियों का उल्लंघन करते हुए तुम भजन करो, एकांतिक हरि भजन भी, तो क्या है उत्पाद, वो केवल उत्पाद है। आज हम देखते हैं हमारे दिन की तरफ जो नित्य में भजन करते हैं, चिंता बनने जा सकते मधुग्रह करते हैं, गोवर्धन की परिक्रमा करते हैं, वैष्णव का संग नहीं करते, हरि नहीं कथा करते, दो दिन के बाद में जरूर उनका पसंद हो जाता है, गिर जाते हैं। हमारी भी अजमाई की जब देखते हैं गुरु वैष्णव का आदेश नहीं लेकर के उनका अंग भजन नहीं करते, दो दिन तक खूब परिक्रमा करेंगे, निर्जला उपवास करते हैं, रात भर जागरण करते हैं, और तीसरे दिन कहते हैं प्यारी नहीं जाते, तो कुछ हुआ नहीं, अपने पैरों पर बल पर खड़े होकर के मातुकृत करने जाएंगे, हम तो अपना रिक्शा चलाएंगे और भजन करेंगे। दो दिन के बाद में रिक्शा खींचने लगे, तीसरे दिन के बाद में हरिनाम चरनाम तो गया भूली में, और वैष्णव के प्रति आदर से उठा हो गया, मैं गोवर्धन की परिक्रमा करता हूँ, वास करता हूँ, आया बिना ले गया इस जहन में, किसी स्त्री को भगा करके लेकर के चले गए, ये इसका भजन हो गया खत्म। इसलिए गुरु वैष्णव के अनुभव निर्जय में भजन करने की चेष्टा मत करो, ये हमने प्रभुपाद जी के मुख से, गुरु वैष्णव के मुख से, भक्त विनोद ठाकुर जी से और महाभाव श्रीमद भागवत का विचार देखो, मत जाओ भजन करने के लिए, वैष्णव के संग में श्रद्धा का करते हुए उनकी कृपा से प्रयोग करने का, और अपने मन से नाम करेगा वो क्या है, काशी का नाम है और मन इसलिए वैष्णव के चरण में अनुग्रह में रहता थे, वैष्णवता सीखो, वैष्णवता के गुण तुम्हारे अंदर में आए, यथार्थ कृपालुता हो, दयालुता हुए, सहिष्णुता होए, और सब गुण आए, सब में संभाव आए, एक तरह से संभाव की जरूरत नहीं है, संभाव नहीं, जिसमें जैसा गुण है भक्ति है उसके प्रति आदर हो, जिसमें भक्ति नहीं है उसके प्रति आदर नहीं हो, सब वैष्णव को लाने की चेष्टा करेंगे और भगवान का वैष्णव के अनुग्रह भजन करेंगे, इसके बिना हमारा कल्याण नहीं है, इसलिए वैष्णव का चरित्र भगवान के चरित्र से भी अधिक प्रभावशाली और हमारे लिए वहीं से बोलो वहीं से बैठे।